नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संघर्ष पर लोकसभा में भारत का पक्ष रख रहे हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, अमेरिका, इसराइल और ईरान के हमले और बढ़े। सेंसेक्स में 2% से अधिक की गिरावट। लोकसभा ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र आज महान स्वाधीनता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश की किपा मेरो ने भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। आइए सुनते हैं।
कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई, अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान DAP और NPKS जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही DAP और NPK के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। PM कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में जानकारी और इसे निपटने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने कहा कि संघर्ष से पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार के हर अंग को नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने महत्वपूर्ण वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों के एक समूह के गठन का निर्देश दिया जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण से समर्पित रूप से काम करेगा। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके क्षेत्रीय समूहों को काम करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया में अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। इस संघर्ष से ऊर्जा संकट बढ़ गया है। तेहरान के कई जिलों में विस्फोटों की सूचना मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख फातेह बिरोल ने कहा कि संघर्ष के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के बाद से क्षेत्र भर में 40 तेल और गैस सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचा है।
ऊर्जा मोर्चे पर संघर्ष अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संकट 1970 के दशक के तेल संकटों से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर रखा है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात में हवाई सुरक्षा बलों ने हाल के घंटों में देश की ओर दागी गई कई मिसाइलों को विफल कर दिया है और पुष्टि की है कि मिसाइलों के मलबे से अबुधाबी के अल शवामेक इलाके में एक भारतीय निवासी को मामूली चोट आई है। लेबनान के दक्षिणी मोर्चे पर इसराइली सेना ने महत्वपूर्ण कश्मीरी पुल को नष्ट कर दिया है। लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसे आपराधिक आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये साजिश देश के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के उद्देश्य से रची गई है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
अमेरिका की सेना ने हवाई हमलों में ईरान के होम टर्बाइन इंजन उत्पादन संयंत्र को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान इस संयंत्र का उपयोग हमलावर ड्रोन और विमान के पुर्जों के लिए गैस टर्बाइन इंजन बनाने में कर रहा था। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर नष्ट हुए संयंत्र की दो तस्वीरें साझा की हैं। इनमें हमले से हुए नुकसान को देखा जा सकता है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण शेयर बाजार में गिरावट है। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में लगभग 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 1794 अंक गिरकर 72738 पर, जबकि निफ्टी 593 अंक गिरकर 22522 पर आ गया। बाजार में लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सहमति दे दी है। आज लोकसभा में विधेयक पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विस्तृत विश्लेषण के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, टीएमसी के सौगत राय और डीएमके की डॉ टी सुमति सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के पेश होने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों को कमजोर करता है। जवाब में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन न केवल अधिक निवेश आकर्षित करेगा बल्कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी सुगम बनाएगा।
The recommendations of the company law committee.
कंपनी विधि समिति की सिफारिशों और 2022 की रिपोर्टों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद समिति में उद्योग संगठन, पेशेवर संस्थानों, कानूनी और लेखा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रिपोर्टों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर भी रखा गया था, जिन पर टिप्पणियां प्राप्त हुई और फिर उनकी जांच की गई। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरणों की शक्तियों के मुद्दे पर प्रस्तावित प्रावधान SEBI, प्रतिस्पर्धा आयोग और IBBI जैसे अन्य नियामकों को दी गई शक्तियों के समान है।
कॉम्पिटिशन कमीशन एंड IBBI।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के अंतर्गत केरलम को लगभग 312 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस निधि का उपयोग नहीं किया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस निधि की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब संबंधित राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।
केरलम सरकार ने अभी तक इस राशि का उपयोग नहीं किया है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 311 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें विशेष रूप से वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम कम करने वाली परियोजनाओं के लिए 72 करोड़ रुपए शामिल हैं। वन अग्नि न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत 17 करोड़ 73 लाख रुपए और शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत 222 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फेज 2।
आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश भर में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए पीएम ई बस सेवा पहल शुरू की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत पिछले महीने 225 इलेक्ट्रिक बसों के पहले बैच की आपूर्ति की जा चुकी है।
इसकी पहली खेप 225 बसों की अभी पिछले महीने ही डिलीवर कर दी गई है और बहुत जल्दी आने वाले महीनों में 6,500 बसों के एग्रीमेंट भी स्टेट्स ने कर लिए हैं। तो जैसे जैसे एग्रीमेंट होते जाएंगे कंपनीज डिलीवर करती जाएंगी और इस 10,000 की जो पहली खेप है ये 2027 के अंत तक ये कम्प्लीट होगी। एक समयबद्ध तरीके से कैसे लोगों का समय बचे, कैसे पर्यावरण उसमें मजबूत हो, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उन बसों में भी चलेगा।
इस योजना की कुल अनुमानित लागत करीब 58,000 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए का सहयोग दे रही है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। उन्होंने नई दिल्ली में विश्व जल दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन पर सुझाव और विचारों को साझा करने के मंच के रूप में कार्य करेगा। श्री पाटिल ने देशवासियों से जल संरक्षण और भंडारण करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, जल जीवन मिशन हो, रिवर लिंकिंग हो, जल संचय, जन भागीदारी की बात हो, इस सभी के ऊपर हमने उनके साथ डिटेल में चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि जो लोग पहले से ही जल संचय के लिए काम कर रहे हैं, रीयूज के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करने में हमें भी आनंद आया और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो सफल करने में इनका सहयोग मिलेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए सरकार के प्रयासों ने देश में टेलीविजन देखने के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय एआई स्किलिंग पहल, माई वेव्स इनबिल्ट टीवी ट्यूनर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो कभी एक बड़ा सेट टॉप बॉक्स हुआ करता था वो अब आधुनिक टेलीविजन सेटों में इनबिल्ट टीवी कार्ड के माध्यम से एकीकृत हो गया है। यह कदम टेलीविजन निर्माताओं, प्रसार भारती और दूरदर्शन के बीच फ्री डिश पहल के तहत सहयोग से संभव हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अगले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय हेतु राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को डिजिटल वाउचर आवंटित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक दल को राज्य के भीतर क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट का मुफ्त प्रसारण समय आवंटित किया गया है। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन्हें वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों पर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। संसद के दोनों सदनों ने आज स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन वीर सेनानियों ने छोटी उम्र में ही देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं।
हमारे इन महान शहीदों की वीरता की अमर गाथा हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रही है। हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं।
अरुणाचल की पैरा एथलीट किपा मेरो ने ओडिशा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेची मेटा ने महिलाओं की 400 मीटर T13 वर्ग में रजत पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, अमरीका, इसराइल और ईरान के हमले और बढ़े। सेंसेक्स में 2% से अधिक की गिरावट। लोकसभा ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश की किपा मेरो ने भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।